ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सब लोग हृदय से पुकारिए, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका उंडारू विष्णु मंदिर में स्वागत है। उंडारू विष्णु मंदिर, ये विष्णु मंदिर, उंडारू विष्णु मंदिर पाजका क्षेत्र में है। जब हम कल आए थे तो पाजका क्षेत्र, कल हम उस तरफ गए थे, मेन रोड के लेफ्ट साइड में टर्न लिया था हमने, आज हम उसके राइट साइड में आए हैं। तो पाजका क्षेत्र के इस गांव का नाम भी वंडारू, उंडारू नाम है, उंडारू गांव। और जैसे हमने बताया था ना आपको, वादिराजस्वामी, कल लास्ट में कथा किया था ना, वादिराजस्वामी रामाचार्य और गौरी देवी इनके पुत्र के रूप में वादिराज स्वामी का जन्म हुआ था। तो वादिराज स्वामी सौदे मठ से हैं, अष्टमठ में से, और वो सौदे मठ के नियंत्रण में ये मंदिर है, और सारा जो गांव है ये पूरी प्रॉपर्टी सौदे मठ की है। और 800 साल ये मंदिर पहले बनाया गया था, 800 साल पहले, और अभी अप्रैल में इसका जीर्णोद्धार होके नया मंदिर बनाया गया है। इतना सुंदर मंदिर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभी अगर ये मंदिर की जो शिल्पकला है, हाँ शिल्पकला यानी पत्थर की जो डेकोरेशन बनाते हैं, वो अगर लोग गुजर गए, अपने जीवन समाप्त होने के बाद चले गए, तो फिर कौन बनाएगा इसको ऐसे, क्योंकि किसी लोगों को आजकल ऐसे कला में इंटरेस्ट नहीं है, उनको आईटी में काम करना है और बाकी चीज़ों में काम करना है। लेकिन ये जो हमारा धन दौलत है, हमारा ऐश्वर्य है, ये अभी इतना नया नया बना के रखा है। जैसे कल हम लोग उधर गए थे ना, किधर, परशुराम मंदिर में, उधर भी देखा ना आपने कितना सुंदर मंदिर बनाया था। फिर हम लोग कुंजारा देवी मंदिर में गए थे, उधर भी ऐसा ही सौंदर्य मिला आपको देखने के लिए। तो हमारे संस्कृति, साउथ इंडियन संस्कृति का ये धरोहर है, लेगेसी है, जो बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं सोच रहा था कि ऐसे इतना सुंदर खम्भे, इतना सुंदर मंदिर, तीर्थ मंडप, हाँ इतने सारे चीज़ बनाए ना आप, देखा ना कितना चीज़ बहुत बारीकी से बनाया गया है। क्यों बनाते हैं ऐसे? एक झोपड़ी बनाएंगे तो भी भगवान बैठ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन हमारे परम गुरुदेव ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इसका उनके संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे, एक बार उनको जुहू मंदिर के चौपाटी के रेती पर वो चल रहे थे मॉर्निंग वॉक, तो रिपोर्टर आते थे उनको मिलने के लिए, कभी कभी इंटरव्यू लेने के लिए वॉकिंग में। तो उनको पूछा कि आप इतना बड़ा मार्बल का मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतना ऐश्वर्य वाला, इतना पॉश? तो उनके हाथ में डंडा लेके चल रहे थे, वो डंडा उन्होंने जैसे जमीन पर रेती में गाड़ दिया उनके सामने। वो बोला, मैं इधर भी बैठ सकता हूँ भगवान को लेकर, लेकिन आप इधर आएंगे सुनने के लिए? क्योंकि मैंने इतना भव्य मंदिर बनाया है, वो भव्य मंदिर किसका है, देखने के लिए लोग आएंगे, फिर वहाँ बैठ के कथा सुनेंगे। मंडप भी बनाया है कथा का, भगवान को भी बहुत सुंदर सजाया है, बहुत सुंदर तरीके से रखा है। हमारे पूरे इस्कॉन वर्ल्ड में 652 मंदिर है प्रस्थापित, यानी जिसमें भगवान का विग्रह जो है वो स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठापना की गई उसकी। बाकी सेंटर्स तो हजारों हैं हमारे, लेकिन जिसमें एकदम ढंग से अर्चा विग्रह पद्धति की पूर्णता से भगवान की पूजा की जाती है स्थापन करने के बाद, ऐसे 652 मंदिर है। और हमारे इस्कॉन की ऐसी विशेषता है कि जिस तरह से भगवान के विग्रहों का श्रृंगार हमारे मंदिर में होता है वो बहुत अद्भुत होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही बेस्ट है, लेकिन इस्कॉन मंदिर में जो श्रृंगार होता है ना वो बहुत ही अद्भुत होता है। वैसे ही उडुपी कृष्ण मंदिर में भी अद्भुत श्रृंगार होता है, तिरुपति बालाजी में भी अद्भुत श्रृंगार होता है। जहाँ जहाँ भक्ति का कल्चर पहले से था, रामानुजाचार्य इनके वजह से या ऊपर महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज की वजह से, तो वो जहाँ पर भक्ति की संस्कृति को बनाया गया, अच्छी तरह से क्या कहते हैं बना दी गई, परवरिश की गई उसकी, वहाँ पर विग्रहों का श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। और जब हमारे जैसे समझो अभी आपके पास मूर्ति है, जैसे बड़े बांडेश्वर में गए, साक्षात बलराम जी वहाँ विराजमान है, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर। उसका बहुत कारण है, एक कारण है कि वहाँ पर भगवान की इतनी सुंदर तरीके से सेवा नहीं होती है, इतना श्रृंगार बहुत बढ़िया नहीं होता है, तो लोग भी कम पहुँचते हैं वहाँ पर। और लोग कम पहुँचते हैं इसलिए धन कम आता है, धन कम आता है इसलिए श्रृंगार इतना बढ़िया नहीं होता है, फिर और लोग कम आते हैं। इसको कहते हैं दुष्ट चक्र, विशेष साइकिल कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जितना ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा होता है ना, केवल भगवान को देखने के लिए लोग आते हैं। हम लोग कहते हैं कि पुजारी लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, वो तो प्रवचन नहीं दे रहे हैं, वो गलत श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन वो उनका बहुत बड़ा प्रचार है, बिना बोले किया हुआ प्रचार है। जब वो ठाकुर जी को व्यक्ति मानकर, परम पुरुष परम भगवान मानकर, प्रेम से और भक्ति भाव से उनका श्रृंगार करते हैं और कुछ बोलते नहीं है, केवल आरती करते हैं और श्रृंगार करते हैं, तो उनको जब देखने के लिए लोग आते हैं तो उनका श्रृंगार उनके साथ बोलता है, और भगवान को, भगवान के लिए, भगवान मतलब उनके लिए भगवान आकर्षक वस्तु बन जाते हैं। जिस भगवान के विग्रहों को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं ना, वो सब लोग उसमें आकर्षित हो जाते हैं। मैं आपको मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। 1986 में हमारा राधा गोपीनाथ का मंदिर आया, मतलब उसका जगह लिया वगैरह। 1987 में उसका प्रतिष्ठापना किया गया, राधा गोपीनाथ जी भगवान का। उसके कुछ साल बाद गौर निताई और श्रीनाथ जी महाराज का स्थापना किया गया। उसके बाद में ललिता विशाखा देवी राधा गोपीनाथ के बाजू में खड़े हो गए। और तब मैं ये प्रोफेशनल कैमरा लेके बहुत फोटोग्राफी करता था, और उस समय मैं मंदिर में निवास भी करता था, 2 साल पूरे मंदिर में रहा मैं परिवार को लेके। उस समय कोई था नहीं ज़्यादा भगवान की सेवा करने के लिए, तो मैं और मेरी पत्नी रोज राधा गोपीनाथ का श्रृंगार करते थे, एवरी डे विदाउट फेल। हमको छुट्टी मिलती नहीं थी क्योंकि कोई था ही नहीं, और तो वो श्रृंगार करने के बाद में मैं फोटोग्राफी भी करता था, क्लोजअप दूर से, साइड से, आगे से, पीछे से। तो वो उस समय के फोटोग्राफ में जो राधा गोपीनाथ दिखते थे और आज 20 साल के बाद में आप देख रहे हैं, उनके अंदर बहुत अंतर है, ये आपको देखने वाले को पता चलेगा। क्योंकि जैसे आप विग्रह की सेवा प्रेम से और प्रेम से और अधिक प्रेम से करते जाएंगे ना, उतने वो विग्रह जो खिल जाते हैं पूरे, उनका तेज बढ़ता है। ऐसा नहीं कि उनका तेज नहीं है, लेकिन वो लुप्त रहता है। आपके भजन से, आपके प्रेम से, आपकी सेवा से उनका तेज प्रकट होने लगता है, और जितना आप उनकी सेवा करोगे उतना वो अधिक तेजस्वी हो जाते हैं। वैसे ही मेरा लंदन में गया था, तभी हमारा प्रभुपाद जी का एक मंदिर है वहाँ पर, राधा लंदनेश्वर बहुत सुंदर मंदिर है वो। वहाँ पर मैं गया था तभी एक बड़ी वृद्ध माता जी थी डिवोटी, उन्होंने पिछले 10 साल से राधा लंदनेश्वर का सेवा किया था, भोग बनाना, श्रृंगार करना, जो भी कुछ है, पूरा समर्पित थी माता जी वो। और 10 साल के बाद में थोड़ा वृद्ध हो गई वो, तो लोगों ने उसकी सेवा को क्या कहते हैं उसको सराहने के लिए, हाँ, अप्रिशिएट करने के लिए कि इन्होंने इतना सेवा किया, लगातार सातत्य पूर्ण तरीके से। तो उनको उन्होंने एक बर्थडे कार्ड बनाया, हाँ, और बर्थडे कार्ड में बहुत सारे फोटो लगाए, इस साइड पे 10 साल पहले वाले राधा लंडनेश्वर के फोटो लगाए कार्ड के, और इस साइड पे अभी के फोटो लगाए। और क्या कहें, मैंने उन्होंने मुझे वो कार्ड दिखाया कि हम ये कार्ड माताजी को देने वाले हैं आज शाम को, उसके बर्थडे में मैं भी गया था। जब मैं कार्ड देखा तो क्या देखा मैंने, इस साइड में जो फोटो है ना वो थोड़े से दुबले पतले लग रहे हैं, और ये साइड के फोटो है ना ऐसे चब्बे, ऐसे गाल ऐसे बड़े बड़े आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे बहकाने की बातें नहीं है कि आप यहाँ इंडिया में बैठे हो और मैं लंदन की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी फेंक सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। और उनको पूरा विश्वास है उन वहाँ के भक्तों को कि माता जी के हाथ का खा खा के भगवान भी चब्बी हो गए, बहुत अच्छे गुगुबित। तो ऐसा होता है, यहां तक कि राधा लंडनेश्वर के कपड़े भी उनको टाइट होते हैं, पहले कपड़े अभी उनको नहीं होते हैं, जो पहले सिलाए हुए कपड़े ना माप से वो आज टाइट होते हैं उनको, तो महाप्रसाद में लोगों को दे देते हैं उसको। इसका कहने का मतलब क्या है, ये सब बताने का अर्थ क्या है, आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं हम कि भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान व्यक्ति है, उनके असीम कृपा से वो पत्थर के मूर्ति में आने के लिए राजी हो जाते हैं हमारे लिए। भगवान को मूर्ति में मान नहीं सकते हैं, भगवान तो अनंत है, असीम है, लेकिन वो अनंत और असीम भगवान जो है वो अचिंत्य भी है, उनको समझना भी मुश्किल है। आप कितना भी बुद्धि लगाओगे, कितना भी ज्ञान करो, कितना भी करेंगे, तो पूरे भगवान को जानना किसी के बस में नहीं है। जितना वो आपको देना चाहते हैं उतना ही आप ले सकते हैं उनके बारे में ज्ञान, जितना अनुभूतियां अनुभव उनको आप उनके विषय में आपको देना है आपके भक्ति के अनुसार उतना ही वो लेंगे, उतना ही देंगे, उतना ही आप ले सकते हो। यू कैन एक्सेप्ट द रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड एज पर योर कैपेसिटी एंड एज पर हिज डिजायर, लेकिन वो व्यक्ति हैं, और जितना आप व्यक्ति के रूप में उनके साथ में आदान प्रदान करोगे ना, हाँ, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, उसका अनुवाद है। इसका मतलब क्या है, भगवान के शास्त्र में लिखा है कि भगवान वही हमारे सब कुछ हैं और कोई हमारा कुछ नहीं है, वही हमारे माता है, वही पिता है, वही बंधु है, वही सखा है, वही मित्र है, वो जो भी कुछ है वो हमारे वही है और वही बन टिकते हैं फाइनली, बाकी सब या तो काल के प्रभाव से चले जाते हैं या तो नाराज होकर चले जाते हैं या तो घटस्फोट लेके चले जाते हैं, है ना, लेकिन जाते ज़रूर हैं, आने वाला हमेशा जाता है, लेकिन भगवान का जो हमारा साक्ष्य है वो बना रहता है जन्म जन्मांतर तक। हाँ, ये जन्म के लिए नहीं, आप अगर कीड़ा मकोड़ा बनकर भी हम आएंगे ना तभी भी हमको साथ देंगे वो, इसलिए कहा गया है त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सब कुछ वही है हमारे। और ऐसे भगवान को जब हम व्यक्तिगत रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो वो भी व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसकी अनुभूति देते हैं कि मैं व्यक्ति हूं। ये बात हम सबको समझना बहुत जरूरी है। हमारे स्वामी जी है ना हमारे समाज के, मैं बचपन में गांव में एक बार आया था तो उन्होंने कहा था कि मंदिर में जब भी आप जाएंगे ना तो कुछ देर बैठना चाहिए, ऐसे हमारे भाषा में कहते हैं कि हमारा पार्श्व भाग जो है मंदिर में टिकना चाहिए, ऐसे हमारी भाषा में बोलते हैं, उसका अर्थ यह है कि ये भाग जो है उधर टिकाना चाहिए मंदिर में कुछ देर के लिए। अभी लोगों को उसका मतलब मालूम नहीं क्यों ऐसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, अभी नियम है ना, एक शास्त्र कोर का ऐसे बैठ जाते हैं, नहीं वो किसके लिए बैठना है, वो स्वामी जी कह रहे थे कि भगवान से आपको बात करना चाहिए। अभी मैं आपके घर पे आया तो आपसे बात नहीं करूंगा, आपने मुझे प्रसाद पिलवाया तो मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, प्रसाद के लिए बुलाया ना, प्रसाद खिलाऊ जा रहा हूँ। ऐसा होता है क्या कभी? आपके घर में रात का विश्राम करना है मुझे, एयरपोर्ट से आऊंगा, सुबह फ्लाइट पकड़ना है, सोने के लिए आपके घर पे आऊंगा, आया बैग रखा सो गया, स्नान किया सुबह उठ गया निकल गया, जो काम के लिए वो काम किया, और फालतू बात करने की जरूरत क्या है? अरे मैं किसी व्यक्ति के घर में आया हूँ, किसी पत्थर के घर में नहीं आया हूँ, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आप व्यक्ति है मैं व्यक्ति हूँ, मेरा आपका प्रेम का रिश्ता है इसलिए मैं आ रहा हूँ, इसलिए आने के बाद पूछूंगा ना कैसे हो आप, बच्चे कैसे हैं, आप पूछेंगे आप कैसे हो, थक गए हो क्या, क्या दूँ, दूध दूँ, पानी दूँ, क्या खाएंगे, आपका डाइट क्या है, सुबह कितने बजे उठेंगे, सुबह क्या लेंगे, पैक करके क्या दूँ फ्लाइट के लिए, इतनी सब बातें करेंगे ना। वैसे भगवान का मंदिर ऐसा सुंदर, ये डेकोरेशन देखने के लिए नहीं आते हम लोग, वो सुंदर डेकोरेशन के अंदर जो भगवान बैठे हैं ना, मालिक स्वामी, उनको मिलने के लिए आते हैं हम। हर मंदिर का जो हमारा भेंट है ना, विजिट, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम मंदिर के जो अधिष्ठात्रा देवता जो है ना, उनके साथ संबंध बनाने के लिए आते हैं मंदिर में, केवल मत्था टेकने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग मत्था टेक यात्रा नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं उससे, उनके अंदर जो बैठे हैं ना, उनको मिलने के लिए आते हैं। उनसे मन में क्यों ना हो आपको बात करना चाहिए, कभी तो बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो बहुत डिफिकल्ट बात बता रहे हैं, क्या बात करें उनसे, हम हमारी पत्नी को हम जानते हैं, हमारे बच्चों को जानते हैं, हमारे मित्रों को जानते हैं, हमारे यात्रा जो कमेटी है उनको भी हम जानते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी है, इनसे हम क्या बात करेंगे। तो आचार्य वो भी समझाते हैं क्या बात करना है आपको, ये भी बताते हैं इनको देखना कैसे है। आचार्य हमारे बहुत, वो सब जानते हैं हमारी डिफिकल्टी क्या है, हमारी त्रुटि क्या है, हमारे दोष क्या है, हमारी कमी क्या है, और कैसे उसको पूरा करना है वो भी जानते हैं। जो प्रामाणिक जीव होता है ना, सिंसियर सोल, उसके लिए सब गाइडेंस अवेलेबल होता है, कोई मालूम नहीं, पता नहीं, नहीं मालूम पड़ेगा ऐसा नहीं, आपको जानकारी भगवान देंगे अगर आपको चाहिए तो। आचार्य बताते हैं कि सबसे पहले भगवान के विग्रहों के चरणों को देखना चाहिए और चरणों को वंदन करना चाहिए, फिर हमारी नज़र जो है ना वो चरणों से उठाकर पैरों तक लेकर, जंघा से लेकर कटी प्रदेश, फिर वक्षस्थल, फिर वक्षस्थल के बाद में मुख कमल, और फिर सारा श्रृंगार, जैसे आप ऊपर आ रहे हो वैसे देखते। कभी भी भगवान को पहला चेहरा देखकर बाद में पैर देखना नहीं चाहिए, वो चरण देखकर चेहरा देखना वो नम्रता का प्रतीक है। सबसे पहले आदरणीय व्यक्ति को हम कहाँ देखते हैं, उनके चरणों में देखते हैं। जो व्यक्ति आदरणीय है पहले उसके चरणों में देखते हैं, फिर उनका दर्शन करते हैं, वो भी आपको पहले आशीर्वाद देंगे, फिर आप उनका दर्शन करेंगे। अगर वो आपको गले मिलना चाहते हैं तो पहले आप उनको वंदन करेंगे, बाद में वो गले मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि पहले आप गले मिलेंगे फिर वंदन करेंगे। हमारे गुरु महाराज भी आते हैं ना, पहले ऐसे आते हैं हमारे साथ, जब भी मिलते हैं ऐसे आते हैं, तो पहले हम लोग वंदन करते हैं फिर उनको गले मिलते हैं, और हमने जाके उनको गले मिलते हैं, उनको हमको गले मिलने देते हैं, हम लोग खड़े खड़े ऐसे खड़े रहते हैं बस, वो जिनको वो जो उनकी इच्छा है वो उनको करने दो, हम उनके लायक नहीं कि हम जाके उनको गले लगाए, टाइट पकड़े और ऐसे ऐसे भी वो करेंगे हमको ऐसे ऐसे। ये आदर करने का एक तरीका है, हम कभी भी अपने बड़ों को जाकर ऐसे गले लगाकर ऐसे थपथपाते नहीं है, वो हमको थपथपाते, हम उनको गले में खाली मिलते हैं, उनकी गोदी में। तो ये दर्शन करने का तरीका हुआ। फिर आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, अरे आप बोलेंगे प्रभु जी आपकी यात्रा में तो आप बोलते हैं आगे चलो, वो लाउडस्पीकर वाले बोलते रहते हैं, यात्री कृपया ध्यान दे, जल्दी जल्दी पीछे चले, अरे कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ चरणों में देखे, आप तो टाइम ही देते नहीं हो वो उनका प्रैक्टिकल सिचुएशन है, वो उनको बताना पड़ता है। अभी वो 150 लोग आएंगे, हर लोग, हर व्यक्ति अपने भाव से करता रहेगा तो शाम तक एक ही मंदिर में रहेंगे। बोले प्रभु जी आपने बताया था ना, वो सब फॉलो किया हमने तो वो अपने स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपको मौका मिलेगा यात्रा के लोगों को डिस्टर्ब ना करते हुए, आप ये मन ही मन में, अभी आपका दर्शन हो गया है, अभी आप देखो अभी पहाड़ पे गए, वो लोग प्रभु जी बोल रहे थे यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ पर आप बैठ के भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, लेकिन सब लोग सेल्फी ले रहे थे कि नहीं, तो उनका काम बताना जरूरी है ना। वैसे भी आप नहीं सुनेंगे, उनको मालूम है, लेकिन वो बता रहे हैं, आपको एक आइडिया दे रहे क्या कर सकते हैं आप, क्या लाभ ले सकते हैं। लेकिन सेल्फी वेग जो है ना, वो 6 वेगों के ऊपर का वेग है, काम व्रेद कोध क्रोध वेग वाचा वेग उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान, उसके ऊपर सेल्फी वेग है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बार आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सेल्फी वेग को कोई रोक सकता है। तो वैसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, सबसे बड़ा पहली बात है धन्यवाद, आपने हमको दर्शन दिया। गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा भावना चाहिए कि हमारी योग्यता इतनी गिरी हुई है कि हमको अभी यमराज के दर्शन होने चाहिए, लेकिन उनके बदले में आपके दर्शन हो रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपने दर्शन दिया, हमको यहाँ आने के लिए भाग्य दिया। फिर बाद में भगवान का गौरव करना चाहिए, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप सर्वनियंत्रक हो, आपने हमारे लिए कितना सब कुछ किया है, आपका धन्यवाद है। और फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपके चरणों में हमेशा बना रहूँ, आपकी सेवा मिलती रहे, आपसे जुड़ा रहूँ, हमेशा आपसे जुदा कभी हो ना जाऊँ। ये सब बातें भगवान से करनी चाहिए। और फिर बिना भूले जो भक्तगण हैं, हमारे प्रियजन हैं, बेटी है, बेटा है, पति है, जो भी यहाँ पर नहीं आए हैं, अभी आपके साथ नहीं है भगवान के सामने, उन सब के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि ये भगवान आपकी इच्छा हो तो आप इन पर भी कृपा करना, वो भी आपके संबंध में बने रहे। वो कभी आते नहीं हैं, वो कभी कभी आते हैं और मानते भी नहीं हैं, फिर सिगरेट भी पीते हैं, फिर मछली भी खाते हैं, फिर चाय भी पीते हैं, फिर ऐसा भी करते हैं, भगवान थोड़ा उन पर भी कृपा कर देना। ऐसा मैं तो मतलब बुरा नहीं मानना, मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसी प्रार्थनाएं भगवान को करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपकी प्रार्थना सुनकर किसका भी उद्धार कर सकते हैं। जितना उद्धार वो आपका नहीं करेंगे, आपकी खुद के बारे में प्रार्थना सुनकर, उतना से अधिक उद्धार वो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उससे ज़्यादा करेंगे। इसलिए हमारे भक्तों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यू प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू, दोनों का लाभ है उसके अंदर। अगर आप आपके लिए करेंगे, मैं मेरे लिए करूँगा, तो परसेंटेज कम है उसका। लेकिन अगर आपका सौदा ऐसा है कि आप मेरे लिए, मैं आपके लिए करूँगा, दोनों का प्रेयर जल्दी सुनेंगे, उसका परिणाम भी जल्दी मिलेगा, तो ये बुद्धिमानी है। तो भगवान के साथ सामने खड़े होकर प्रार्थना जरूर करना चाहिए, हृदय की बात है ना। अगर आप कोई कष्ट है, पीड़ा भी है ना, कोई बात नहीं, वो भी आप भगवान के सामने बताइए, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है भगवान, आप कृपा करके दया करिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारधि, और आपको बहुत सारी इच्छाएं, क्या बहुत सारी दुनिया की इच्छा है, पैसा चाहिए आपको, ये चाहिए, बोले कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं मेरे ही पास आओ, 10 जगह जाके दस्तखत मत लगाओ, वहां 10 मंदिर में 10 देवताओं के पास जाके नौकिंग मत करो, धन दो धन दो धन दो, सर्व कामो वा, आपके पास बस सब दुनिया भर की इच्छाएं आपके मन में है, तो भी मेरे ही पास आओ। अगर आप विरक्त हो, अकाम, आपको कोई इच्छा ही नहीं है, तो भी मेरे पास आओ। और आपको मोक्ष चाहिए, मोक्ष काम मतलब मोक्ष की इच्छा है, तो भी मेरे पास ही आओ। जो भी कुछ है आपका, छोटा मोटा बड़ा, बहुत भव्य सर्व जो भी कुछ है, वो लेके मेरे ही पास आओ। क्योंकि मेरे पास आने से क्या लाभ है, कि वो बनिया कैसे होता है मालूम है आपको? आपने 5 रुपये दिए, पापा ने कहा था कि 2 अगरबत्ती के पूड़े लेके आओ, आप बनिया के पास गए, आपने 5 रुपये दिया, और पापा ने जो बोला है वो नहीं बोला उसको, पापा ने बोला था अगरबत्ती लेके आओ, आपने कहा 1 4 स्क्वायर सिगरेट का पैकेट दो, ऐसा आपने बनिया को बोला, तो बनिया क्या करेगा, बोले क्या करेगा, बनिया देगा आपको? अरे वो धंधा करने को बैठा है, उसको क्या करना है, आपने मूल्य दिया, आपको क्या चाहिए, वो मूल्य अगर जमता है तो दे देगा, बचे बचे चिल्लर वापस भी देगा आपको। लेकिन समझो आप काका के दुकान में गए, आपके पिताजी के भाई के दुकान में गए, और बोले 1 4 स्क्वायर सिगरेट का पैकेट दो, तो पापा 5 रुपये लेगा और 2 कान पट्टी पे लगा देगा जोरदार। तो आप काका को पूछ रहे, काका वो बनिया ने ऐसा नहीं किया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो काका बोलेंगे, मैं तुम्हारा काका हूँ, मैं तुम पर प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वही दूंगा मैं, तुम कुछ भी मांगोगे तो कल बोले विश T20 का बॉटल दो, मेरे को पीना है, तो मैं थोड़ी दूंगा आपको, मैं आपको प्रेम करता हूँ। वैसे आप देवताओं के पास जाएंगे तो आपके कर्म का मूल्य चुकाने पर आपको जो मिलना है वो मिलेगा, वो देवता आपका विचार नहीं करेंगे आपके लिए अच्छा है बुरा है। अच्छा अभी देखो ब्रह्मा जी के पास में कितने लोग गए, रावण गए, हिरण्यकशिपु गए, हिरण्याक्ष गए, अभी हमारा कल अरुणासुर गए, हाँ दरिगासुर गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं? आपने अगर तपस्या का और क्या कष्ट का मूल्य दिया है तो उसका वरदान देना उनका फर्ज है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी कभी इच्छा से आते हैं, कभी कभी भाग भाग के आते हैं, और कभी कभी बहुत दिल से आते हैं, लेकिन उनको आना तो पड़ता है। हिरण्यकशिपु क्यों आए वो? देवता लोग बोले बाप रे इतना तपस्या कर रहा है, उसके आँख से उसके सर से इतनी ज्वाला निकल रही है कि वो पृथ्वी पर बैठा है और ज्वाला की आँच स्वर्गलोक में लग रही है, बाप रे। ब्रह्मा जी जाओ जाओ जरा देखो क्या चाहिए उसको, इतना क्यों तड़प रहा है वो? तो ब्रह्मा जी से खुशी से नहीं आए, वाह क्या तपस्या किया, क्या वरदान दो आपको, नहीं उनको मजबूरी से आना पड़ा, लेकिन आना पड़ा। पॉइंट इज दिस कि आना पड़ा उनको, उनको वो तपस्या का लाभ वरदान देना ही है, उसको कुछ नहीं कर सकते वो। रावण का भी ऐसा ही है, इतना तपस्या किया तो शिवजी को भी बहुत वरदान देना पड़ा उसको। तो देवताओं का ऐसा है, वो हेल्पलेस रहते हैं, वो अपने ड्यूटी बाउंड रहते हैं, अपने कर्तव्य से बद्ध रहते हैं, वो कर्तव्य छोड़कर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान आपके, भगवान के पास आप जाइए कुछ भी मांगिए, वो बच्चा बोलेगा मम्मी मुझे वो पापा सिगरेट पीते हैं, मुझे भी सिगरेट पीना है, तो मम्मी देगी क्या उसको? नहीं नहीं पापा पीते फिर मुझे भी देना है, नहीं दी। मम्मी आपको वही देगी जो आपके लिए अच्छा है। आप चाहे जो भी मांगेंगे बाजार में जाकर हर चीज़ मांगेगी, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, वो नहीं देगी आपको। जो आपके लिए अच्छा है वही देगी, क्योंकि बीच में ये दोनों के बीच में प्रेम है, प्रेम। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप यहाँ वहाँ मत डोलो, आपके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरे पास आओ। आपके पास कोई भी इच्छा नहीं है फिर भी मेरे बने रहो, आपके पास थोड़ी थोड़ी इच्छाएं हैं तो मेरे पास में आ जाओ, और आपको मोक्ष चाहिए तो भी मेरे पास में आ जाओ। क्योंकि तो मोक्ष चाहिए तो कोई भी देवता मोक्ष दे सकता नहीं है, एक ही व्यक्ति है पूरी निर्माण में, सृजन में, सृष्टि में जो मोक्ष दे सकता, उसका नाम क्या है? मुकुंद। एक ही व्यक्ति है मुकुंद जो मोक्ष दे सकता है, वो है कृष्ण भगवान। तो फिर हमको यहाँ वहाँ क्यों भटकना है? हाँ, तो आलू वाले के, आलू के लिए बनिया के पास, वो तो अगरबत्ती के लिए किराना वाले के पास, वो ऐसा क्यों जाना है? एक ही मेगा स्टोर में चले जाओ, सब कुछ वहीं ले लो। तो हम लोग सब मेगा स्टोर वाले हैं, बनिया वाले नहीं हैं। तो ऐसे आपको भगवान का दर्शन देना चाहिए। अब ये सब इतना पुराण में क्यों बता रहा हूँ आपको? यही बात आपको हृदय में फिट करने के लिए कि भगवान व्यक्ति हैं और वो आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रतिसाद दे सकते हैं, हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्स दे सकते हैं। अगर आप उस स्थिति में हैं, अब आपको समझो मत्था टेक करना है तो मत्था टेक, उनको उनको क्या जरूरत पड़ी आपको रिस्पॉन्स देने की? लेकिन आप कुछ पुकार रहे हो, कुछ दिल से बोल रहे हो उनसे, कुछ आदान प्रदान कर रहे हो, तो वो भी व्यक्ति हैं। जितने हम व्यक्ति हैं उससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति वो हैं। हाँ, द काइंड ऑफ पर्सन वी आर, मोर ऑफ अ पर्सन गॉड इज। तो जितना व्यक्ति होकर भावना आपको है, उससे परम व्यक्ति, परम पुरुष, परम भगवान होने से उनकी भावनाएं हमसे भी श्रेष्ठ हैं। तो आप जितना उनको प्रदान करेंगे, उसका आदान प्रदान वो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रगत व्यक्ति हैं। तो यहाँ की कथा भी ऐसी है। यहाँ की क्यों? हर जगह पर जहां जहां भक्त श्रद्धा से भगवान के लिए प्रस्तुत करता है अपने आप को, वहां वहां उनको ऐसे अद्भुत आदान प्रदान का अनुभव होता है। ऐसी एक ही कथा नहीं है ये यो मंदिर में, ऐसे बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में हैं। तो यहाँ की कथा ऐसी है कि 800 साल पहले जब ये वादिराज महाराज ने ये मंदिर बनवाया, विष्णु को स्थापन किया अपने गांव में, सौदे मठ की तरफ से, अपने मठ की तरफ से, तो वहाँ पर ब्राह्मण थे, पुजारी बनाते ना, अभी मंदिर बनाते तो पुजारी चाहिए, तो पुजारी थे ब्राह्मण, उनके परिवार था, वहीं रहते थे, तो रोज अच्छी तरह सेवा करते, श्रृंगार करते, भोग लगाते, एकदम सागर संगीत अच्छी तरह से करते। तो उनको एक पुत्र हुआ, यथावकाश पुत्र बड़ा हो गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो मुख्य पुजारी थे, उनको कहीं बाहर जाना था। तो उसने अपने पुत्र, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा था, ठीक था, समझदार था, तो उसको कहा कि आप ना, अभी आपने देखा है ना मेरे साथ बैठ के आप देखते थे हमेशा, वो हमारे ब्राह्मणों में ना एक रीति है, आप वृंदावन जाइए, गांव आइए, किधर भी आइए, ब्राह्मणों में रीति है कि ब्राह्मण के बालक को वो बचपन से ही मंदिर लेके जाते हैं, गर्भगृह में लेके जाते हैं, उनकी घंटी धुलवाते हैं, प्लेट धुलवाते हैं, प्लेट बनवाते हैं, प्लेट सब कुछ उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, ताकि बच्चा देख देख के और समझ समझ के आगे पुजारी बन सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। तो उसको भी ट्रेनिंग दिया था। तो उन्होंने कहा आपको सबको देखा है ना, अभी आप भगवान की अच्छी तरह सेवा करना, मैं 2 दिन के बाद में आऊँगा। तो बालक ने जितना भी समझा था वो करने लगा, और पिताजी ने कहा था कि सुबह को नाश्ता, दोपहर को लंच, और शाम को संध्या भोग भगवान को देना है। थाली में रखना, जानते ना कैसे आप तुलसी रखना है, थाली में रखना है, चम्मच रखना है, घंटी बजाना है, भगवान को बोलना है भगवान आप लीजिए, और भगवान लेंगे फिर भोग। ऐसा बोल के वो चले गए। अब ये देखो बालक की श्रद्धा कैसे होती है। शास्त्र में कहा गया है कि हमें सब लोगों को बालक की तरह बनना चाहिए। हम लोग भी एडल्ट हो गए हैं, थोड़े स्पाइल भी हो गए हैं एडल्ट होने के बाद, बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज हो गया है, लेकिन बालक कैसा ना, निष्पाप होता है, निरागस, निष्पाप, इनोसेंट कहते हैं उसको। निष्पाप मतलब उसका भाव, मन में कोई कपट नहीं है उसके, एकदम सरल भाव स्वभाव होता है। पापा ने कहा कि बालक को कि भोग लगाइए, भगवान खाएंगे, तो उन्होंने ना कुछ बनाया और भोग लिया, भोग लगाया, घंटी बजाया, मंत्र बोले, बाहर आया देखा तो अरे वैसे ही है सब कुछ, भगवान ने खाया नहीं। तो बहुत विनती किया, भगवान खाइए आप, आपको क्या पसंद नहीं आया क्या, आपको पसंद वाला बनाऊं? हमारे मम्मी ने, वो हमारे गांव में ना बहुत सुंदर, अभी सब ट्रेडिशन ख़त्म हो गया है, वो हमारे गांव में ना वो मैंगो के सीज़न में ना कच्चे मैंगो होते हैं ना, उसको नमक के पानी में रखते हैं, चीनी माती के बरणी में, और वो साल भर उसका उपयोग करते हैं। मैंगो तो गर्मी में आता है ना काली, लेकिन वो मैंगो का उपयोग साल भर में आप कभी भी चटनी गोज्जू बना सकते हैं उसका, बहुत सुंदर सुंदर। कल आपने मुल्की के मंदिर में वो चटनी खाया था क्या? थोड़ा सा, पता नहीं थोड़ा सा क्यों दिया था वो, ज्यादा क्यों नहीं दिया, सेकेंड टाइम क्यों नहीं आई, बार बार प्रश्न मेरे मन में था, तब तक मेरा प्रसाद समाप्त हो गया। इतना सुंदर, उसको गोज्जू कहते हैं, गोज्जू। वो कभी आमले का बनता है, कभी आम का बनता है, कभी बहुत चीजों का बनता है, उसको में हिंग होता है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट होता है वो। तो वो आम रखते हैं, कभी बैम्बू होता है ना, बैम्बू जंगल में ना, जब बाम्बू होता है ना, तो पहले वो खाने लायक होता है, फिर जाके वो कड़क बन के एक्चुअल बैम्बू बन जाता है, उसको टेंडर बैम्बू कहते हैं, टेंडर शूट्स उसके हम लोग हमारे भाषा में कीरलू कहते हैं। तो वो भी एक ही सीजन में आता है, बारिश शुरू होने के समय आता है, और बारिश आगे बढ़ी तो फिर वो नहीं मिलता है, शुरू शुरू में मिलता है, और जो जानकार लोग हैं वो जंगल में जाके उसको काटते हैं, और घर पे आके एक तो फ्रेश सब्जी बना के खाते हैं, या तो फिर उसको काट काट कर स्लाइस बना के नमक वाले बरनी में डाल के रखते हैं, और फिर साल भर में उसके 500 व्यंजन बनाते हैं। आषाढ़ महीने में मिलता है, बारिश के शुरुआत में। नेपाल में मिलता है, कभी हमारे वाड़ा में मिलता है, हमारे गांव में सब जगह मिलता है, जहां पर साउथ इंडिया में सब जगह मिलता है वो। लोगों को ये पता नहीं है कि वो बाम्बू भी खाने की चीज़ होती है। ऐसे ऐसे ट्रेडिशन हमारे देश में है। तो उसने कहा कि हमारे दादी ने ना वो मैंगो सब बना के रखे हैं इसमें, आप उसका कुछ सब्जी बना के दूँ क्या आपको? तो उसको लगा हाँ भगवान बोल रहे हैं, हाँ, उसको लगा कि ठीक है इसका ट्राई करते हैं। तो उसने ना चावल बनाया अपने, अब ज़्यादा उसको आता नहीं था, चावल बनाया और वो जो मैंगो है ना वो निकाला, उसमें से पल्प निकाल के उसको स्मैश किया, और चावल के साथ में भगवान को भोग लगाया, भगवान को बिरा आप कृपा करके खाना इसको, और वो भोग लगा के खेलने के चला गया, और खेल के लौट के आए तो देखा कि थाली खाली थी, नो चावल नो मैंगो ओनली गुटली, गुटली वहां पर थाली में है। जब तक पिताजी लौट के आए तो बोले महाप्रसाद लाओ, बोले महाप्रसाद तो भगवान ने खा लिया। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने इतनी बार लगाया कभी खाया नहीं, मैंने ही खाया उसके बाद में महाप्रसाद। तो बोले नहीं भगवान ने खाया, मैंने आपने कहा था ना भोग प्रेम से लगाओ भोग वो खाते हैं, तो उन्होंने खाया, तो दिखाओ कहाँ खाया। तो आके देखा तो थाली में, भगवान की थाली में केवल गुटली है, और सब खाया हुआ, कैसे होता है ना हाथ, हम लोग कैसे करते, सब सब नजर आ रहा है उसके अंदर। तो बड़े प्रेम से बल्ले बच्चे को गले लगाया उसने। तो ये भगवान है, आतुर है आपके लिए रिस्पॉन्स देने के लिए। आपको भाव तो दिखाइए पहले, पहले कैसे रिस्पॉन्स देंगे आपको? आप प्रेम तो दिखाइए उनके लिए, सेवा तो दिखाइए, प्रेम तो प्रस्तुत कीजिए, फिर वो आतुर हैं। जितना प्रतिसाद देने के लिए आपको इच्छा है कि मिलना चाहिए, उससे ज्यादा प्रतिसाद देने के लिए वो आतुर रहते हैं। वो हमारे माधवेंद्र पुरी थे ना, वो ऐसे ही गए थे एक बार रेमुना में, जगन्नाथपुरी के आगे उधर मालदा के पास में, वो बहुत दूर चंदन लाने गए थे वहां पर, फिर चंदन अर्पण किया, और फिर एक बार बैठे वहां पर तो वो बोले या इस मंदिर में खीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में मशहूर है वो खीर। तो उसका वर्णन सुना उन्होंने, और वो जब भोग लगाने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो मुझे चखने को मिलेगी क्या? बोले मिलेगी ना, अभी नहीं भोग लगने के बाद। तो उनको इतना दुख हुआ, अरे मैंने भगवान को भोग लगाने के पहले उसको चखने का इच्छा किया, कितना पापी हूं मैं। बड़े दुखी हो गए वो, जाके दूर जंगल में जाके बैठ गए और रोने लगे वो, कि कितना मैं कहते ना क्या कहते हैं उसको, असंयमी हूँ, इम्पेशेंट हूँ, मुझे इतना भी धीर नहीं है कि भगवान भोग लगाए खाए फिर मैं उसको चखलूँ। उनके मन में विचार था कि मेरे गोपाल जी जो वृंदावन में हैं उनको भी ऐसे मैं बनाऊंगा, रेसिपी मालूम पड़ेगा तो टेस्ट करूंगा तो वैसे ही बनाने का कोशिश करूंगा, कोई ऐसा स्वार्थी भाव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को दोषी माना। तभी उनको खीर चखने की इच्छा हुई, इसलिए 12 12 ग्लास में भी वहां पर अभी भी खीर लगाते हैं भगवान को। पुजारी ने दरवाजा खोला, सब ग्लास ले गए पुजारी और सो गए। तो रात को ना भगवान उनके स्वप्न में आए पुजारी के, बोले तुमको पता नहीं तुमने कितने पात्र रखे थे उसमें, तुमने गिने नहीं, तुमने ऐसे पात्र उठा के ले गए। अरे तुमने 12 रखे थे ना, एक मैंने मेरे धोती के पीछे छुपा के रखा है, तो तुम 11 ही लेके गए, वो मैंने माधवेंद्र पुरी के लिए रखा है, जाओ वो पात्र जो मैं छुपा के रखा है उसको ढूंढो, किधर है माधवेंद्र पुरी, और उनको दे के आओ। तो पुजारी हाथ में एकदम जग गया, अरे ये क्या चमत्कार है, तुरंत नहा धो के अंदर चला गया भगवान के गर्भगृह में, देखा तो भगवान के धोती के पीछे एक पात्र रखा हुआ है खीर का। इतना वो खुश हो गया बीच रात में तो पात्र निकाला और जाके ढूंढने लगा, महादेवेंद्रपुरी कहाँ पर हो, कहाँ पर हो तुम माधवेंद्रपुरी, कौन हो भाग्यवान जी माधवेंद्रपुरी, ठाकुर जी ने आपके लिए खीर रखा है, कहाँ हो करके करके वो गांव के सीमा पर आ गया। तो वहां पर बैठकर माधवेंद्रपुरी कोई पुकार रहा है तो माधवेंद्रपुरी वहां भजन करके रो रहे हैं। तो फिर वो बोलते हाँ मैं ही हूं, क्या हुआ? बोले ये लो तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी करके रखा है। तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे, उन्होंने रोते 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 प्रेम से भरे आंसू से वो खीर खाई और कहते हैं उसके बाद में उन्होंने वो पात्र भी खाया मिट्टी का, रोज एक एक टुकड़ा करके पूरा पात्र भी खा लिया, इतना उनको भाव विभोर हो गए थे वो। ऐसा ही है, भक्त ने स्वच्छ हृदय से प्रेम से भोग लिया और ठाकुर जी ने खाया उसको। और हम लोग रोज घंटी बजाते हैं वैसे के वैसे रहता है, क्योंकि तो हम लोग क्या सोचते हैं आज मुझे गुलाब जाम खाना है, पत्नी को कहते हैं आज गुलाब जाम बनाओ, फिर गुलाब जाम बनाते हैं उनको भोग लगाते हैं, मन में क्या है मुझे खाना है तो वो क्यों खाएंगे। फिर भी भोग लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए, उसमें कुछ पाप नहीं है। वो अंडा मछली और नॉनवेज खाने के बदले में ऐसा दिल में इच्छा करके बना के खाएंगे तो चलेगा, मुझे आज लस्सी पीना है, मुझे आज पाव भाजी खाना है, मुझे आज भेलपूरी खाना है, मुझे आज पंच पकवान खाना है, कोई बात नहीं। कम से कम भगवान को भोग लगा के तो खा रहे ना प्रसाद बना के, आगे जाकर उसके क्या होगा कि मैं मेरे लिए कोई आइटम नहीं बनाऊंगा, भगवान के लिए ही बनाऊंगा और उनके लिए ही अर्पण करूंगा। हमारे अंदर ऐसे भक्त हैं, एक हमारी बहुत बुजुर्ग माता जी हैं, आज भी कितने है 20 या 30 साल हो गए होंगे, उनके घर में ना 15 विग्रह हैं भगवान के, पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती है। आज भी सुबह 3:30 बजे उठा उठकर वो मंगल भोग बनाकर भगवान को लगा दिए, कभी रबड़ी कभी बर्फी कभी पेड़ा कभी कुछ कभी कुछ कभी खीर कभी बहुत प्रकार के स्वीट्स मॉर्निंग मंगल भोग में लगा दिए, कभी चार चार भी लगाते हैं। लेकिन उनका नियम है कि मंगल भोग में लगाया हुआ कोई भी भोग वो कभी भी चखती नहीं है, वो सभी लोगों को बांट देती है, चाहे वो धोबी हो दूध वाला हो और पेपर वाला हो, कोई भी आता हो घर पे उसको भाग्य में होता है और वो कभी भी उसको चखती नहीं है। क्यों चखती नहीं है? क्योंकि उनका मन में भाव यह है कि मैं मेरे लिए बनाया, इस भाव से नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये बनाया है और आपके लिए बनाया तो मैं चखूंगी भी नहीं, उसके लिए आपके लिए बनाया है और आपका प्रसाद जिसको आपको देना है उसको दरवाजे पर बुलाओ मैं उसको दे दूंगी। तो भगवान भी उसको प्रतिसाद देते हैं ऐसे प्रेम को। तो ऐसे ही कथा उधर श्रीखंड नाम की जगह है जगन्नाथपुरी के आगे, उधर एक भक्त थे उनका नाम था रघुनंदन ठाकुर। हाँ वो बड़े भक्त, नरेंद्र सरकार बहुत बड़े बड़े भक्त मान रहते थे, उनका ये बालक था। तो ऐसे ही उन्होंने एक बार बताया अपने रघुनंदन को कि भगवान को भोग लगाओ, तो वही भगवान रघुनंदन खा नहीं रहे ना, रघुनंदन भोग लगा रहे भगवान खा नहीं रहे, तो रो रो के भगवान को बहुत गिड़गिड़ाए वो। भगवान ने फिर खाया सब कुछ। तो तीसरे दिन वो लौट के आए उसके पिताजी, और आते ही बोले महाप्रसाद लाओ लंच खाना है मुझे। बोले महाप्रसाद नहीं है, माता बोल रही महाप्रसाद नहीं है आज, क्यों? पता नहीं हमारा बालक शायद वो थोड़ा उद्दंड हो गया है आजकल, जब भी मैं उनको भोग लगाने बोलती हूँ शायद वो खा जाता है और यहाँ पे आके बोलता है कि भगवान खा गए। कि बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, मतलब दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रेनिंग कि भगवान को भोग लगाए और वहीं के वहीं खा ले और बोले कि हाय है ही नहीं कुछ। तो पिताजी ने बोला अरे मेरा तो कर्तव्य है बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, ये भगवान की थाली से खाना अच्छा संस्कार नहीं है। तो रघुनंदन कहाँ है महाप्रसाद? आपने लगा कहा भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने खा लिया उसको। तो बहुत डांटा उसको। तो बच्चा तो कह रहा है पापा मैंने तो आपने जैसे कहा वैसे किया और भगवान ने खाया, अभी नहीं 3 दिन से खा रहे हो और 3 दिन घर में उपवास चल रहा है क्योंकि प्रसाद ही नहीं है। और ठीक है अभी तुम भोग लगाओ और मैं देखता हूँ, मैं अंपायर बन के खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ कैसे भगवान खाते हैं, मुझे भी तो देखना है क्या भगवान खा रहे हैं कि तुम खा रहे हो, मतलब तुम खा रहे मन में बोल रहे हैं और कैसे भगवान खा रहे हैं ये बता रहे हैं उनको। तो वो गए अंदर, भोग की थाली रखी, घंटी बजाई, प्रेम से भगवान को कहा भगवान कपड़ा करके खा लो। तो वो छुप कर देख रहे हैं पिताजी उसके, और भगवान जो है ना वो मूर्ति से ऐसे बाहर आए और वो खाने लगे और वो आंखों के सामने पिताजी देख रहे हैं। तो वो बच्चे के चरणों में गिर गए पिताजी, बोले माफ़ करना बेटा मैं तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम तो मेरे से बड़े भक्त निकले। तो उसके बाद में ना उस गांव में सब लोग उनको पूछते थे, बताओ क्या नाम था उनका पिताजी का प्रभु जी? नरहरि सरकार को पूछा कि बोलो नरहरि पिता कौन है? रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन के पिता हो? तो नरहरि कहते थे मेरे पिताजी रघुनंदन है, मैं उनका बेटा हूं। कैसे? जो संस्कार देता है वो पिता होता है, मैं तो संस्कार इनसे ले रहा हूं, इसलिए मेरा शरीर का पुत्र है वो, लेकिन आध्यात्मिक वो मेरा पिताजी है, इज लाइक माई गुरु। ऐसे भी भक्त लोग हमारे भारत में कितने हैं। अभी आप वो अलालनाथ में जाइए, अलालनाथ में वही कथा है, वही ब्राह्मण अपने पुत्र को बोलता है कि भोग लगा दो, वहां पर भी खीर का भोग लगता है, तो वो लगा रहे थे भोग और भगवान ने रोज खीर पाया, बच्चा रोया बहुत, तो भगवान ने मूर्ति से उतर के बैठ कर बच्चे को रोने को बंद करने के लिए पूरा खीर खा लिया। फिर पिताजी मार्केट से आ गए तो बोले महाप्रसाद लाओ खीर, तो बोले नहीं महाप्रसाद नहीं है, तो बच्चे को बहुत डांटा उन्होंने। ये अलालनाथ था, हमारी जगन्नाथपुरी की कथा है। तो ना अब ये तो नरहरि सरकार बहुत अच्छे भक्त थे, जब उन्होंने ये देखा ना तो वो ऐसे नाराज नहीं हुए, लेकिन कुछ भक्त अलग प्रकार के होते हैं। तो ये आए और अलालनाथ जो विष्णु का स्वरूप है उनको खीर का भोग लगाया बच्चे ने, रो रो के कहा भगवान खाओ इसको। और ना पिताजी छुपके देख रहे थे तो वो झुककर खीर का पात्र हाथ में लेकर भगवान, चार भुजा वाले भगवान ना, दो भुजा वाले, दो भुजा में पकड़ के ऐसे खा ही रहे थे, उतने में उसके छुपे हुए पिताजी ने झपक पड़े भगवान के ऊपर। हले बोले भगवान ऐसे भी कैसे खाते हो आप, ऐसे आप खाने लगोगे तो हम क्या खाएंगे, हमारा संस्कार कैसे चलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे आप, ऐसा क्या होता है क्या, कितनी मूर्ति यहाँ पर है कोई खाता नहीं है, आप कैसे खा रहे हो? ऐसा करके पकड़ के छलांग लगाई ना, तो गरम गरम खीर भगवान के शरीर पर गिर गई, और भगवान का आज भी शरीर पे ना वो जले हुए का निशान है, हाथ पर भी जला गिरा था और छाती पर भी गिरा हुआ है। तो कितना भाग्य था, भगवान ने उनको दर्शन दिया प्रत्यक्ष रूप में, फिर भी मन का भाव तो मन का भाव होता है ना, उसको कोई बदल सकता है क्या, दुर्भाग्य है उसका, क्या करे वो। अभी अगर भगवान को लगता कि भाई ये योग्य नहीं है, इसको श्रद्धा नहीं है मेरे ऊपर, तो भगवान अदृश्य रूप में खाते और वो खाने वाला दर्शन जो है केवल बालक को देते और पिताजी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे मुमकिन था ना भगवान को, लेकिन भगवान ने फिर भी ये बालक का पिताजी ये है चलो इस पर भी कृपा करते, इसलिए वो दर्शन दिया उसको खाते समय मूर्ति के बाहर आकर। फिर भी अगर श्रद्धा नहीं है हमारी तो क्या कर सकते हम। कहते हैं उसने भगवान से इतना अपराधजनक भाषण किया, भगवान ने शाप दिया उसको कि एक तुम्हारे बालक को छोड़कर तुम सब लोग ब्राह्मण लोग मर जाओगे। सारे ब्राह्मण मर गए, केवल वो बालक जीवित रहा और उसने वंश आगे अपना पुजारी का वंश जो है चालू रखा। भगवान बहुत नाराज हो गए उसके ऊपर कि तुम जैसे ब्राह्मण अगर जिएंगे ना तो क्या आदर्श स्थापन करोगे आप, क्या मूर्ति पूजा होगी, क्या अर्च विग्रह पद्धति पूजा होगी, क्या लोग आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, ऐसे अगर मुझे खाना है मुझे मिलना चाहिए ऐसे इस भाव से भोग लगाएंगे तो क्यों खाऊंगा मैं आपके, क्या जरूरत है मुझे खाने की आपका, मैं तो प्रेम का भोगा हूं, इसलिए आप लोगों को नष्ट होना चाहिए। शाप देकर सबको नष्ट कराया भगवान ने, और जो बालक का भाव था उसके उसके ही भाव के ऊपर भक्ति के ऊपर पूरा वंश चलता रहा, नहीं तो वो वंश भी नष्ट हो जाता। तो ऐसे इस गांव में उस ब्राह्मण के बालक में एक आदर्श खड़ा किया और गांव का नाम पड़ा वंडारू। वंडारू का मतलब क्या, खाना खाया, तुलू में वंडारू का मतलब वंडारा मतलब खाना खाया क्या, हाँ। तो ये ऐसे भगवान को उन्होंने पूछा था ना, खाना खाया खाओ। इसलिए नाम वंडारू विष्णु मूर्ति है। तो आप सब लोगों को विनती है कि ठाकुर जी हमेशा भक्त को रिस्पॉन्स देते हैं, हमेशा देते हैं। अगर आप कभी भाग्य से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करोगे तो आपको भगवान के विग्रहों को पूजा करने का भी अवसर मिलेगा। भगवान का विग्रह का पूजा जो हर वक्त नहीं कर सकता है, जो प्रथम दीक्षा लेता है, प्रथम दीक्षा मतलब हरिनाम दीक्षा, चार नियम का पालन करता है, भगवान का भोग लगाकर ही खाना खाता है, बाहर नहीं कभी खाता है, रेस्टोरेंट में होटल में नहीं खाता है, और कई सालों तक ये नियम पालन करता है, तो उसको दीक्षा हरिनाम मिल जाती है, उसको नया नाम भी मिल जाता है। वो नया नाम मिलकर दीक्षा होने के बाद में कई साल तक वो भक्ति का अभ्यास करता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, ब्राह्मणों के गुणों को अपनाने का प्रयास करता है, सूची स्वच्छता, मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता, शास्त्र का ज्ञान, नम्रता, बहुत सारे 9 गुण भगवान ने भगवत गीता में बताए हैं, ब्रह्म कर्म स्वभा स्वभावजम। तब गुरु सोचते हैं कभी योग्य हो गया तो उसको ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, उसको उपनयन कहते हैं, मुंजी, और उसके बाद में उसको 3 काम कर सकता है। पहले जो काम करे वो करेगा ही, लेकिन 3 आम काम और कर सकता है। एक, भगवान के विग्रहों की प्रत्यक्ष शरीर से पूजा कर सकता है, वो श्रृंगार करना, नहलाना वगैरह वगैरह। दूसरा, वो प्रवचन कर सकता है व्यासपीठ पर बैठकर। और तीसरा, वो अग्निहोत्र कर सकता है, दविवाह संस्कार, गृह प्रवेश, जो विधि होते हैं ना अग्निहोत्र, वो संस्कार सब कर सकता है, सीमांतोन्नयन संस्कार, ये 3 करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। तो ये ब्राह्मणों को ही भगवान के प्रतिष्ठापित मूर्तियों की सेवा करने का अधिकार दिया गया है। और गर्भगृह में वही प्रवेश कर सकते हैं, भगवान को छू सकते हैं, भगवान को नहला सकते हैं, भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। ये सेवा करने से ऐसा कहा गया है कि हमारे हृदय के अंदर जितने विकार हैं ना, काम क्रोध आदि विकार जितने हैं ना, वो सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के विग्रह की सेवा करने वाले व्यक्ति विकारों से बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही परिणामकारक रीति से उनका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। प्रभुपाद जी कहते थे कि दोज हु सर्व द डीटीज दे आर वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, वो भगवान के बहुत निकट रहते हैं अगर भाव से कर रहे तो। और उनका यह अनुभव, मैंने अभी क्यों बताया आपको, उनका यह अनुभव है कि रोज जब श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करके श्रृंगार आरती करके बाहर आकर फिर दोबारा भगवान को देखते हैं, तो रोज भगवान उनको अलग दिखते हैं। और आप उनके कभी बात सुनना, कभी माताएं होती है, प्रभु होते हैं, वो हमेशा जिन्होंने श्रृंगार किया है ना, वो सब श्रृंगार दर्शन हो गया, लोग दर्शन करके चले गए, फिर वो बाहर आते हैं और सब साथ में खड़े होकर डिस्कस करते रहते हैं कि मैंने ऐसा पहनाया था, मैंने वो पहना, शायद टेढ़ा लग गया है, शायद वो, अरे यहाँ पर एक लगाना चाहिए था, वो नहीं, ऐसा बहुत इंटीमेटली बातें करते हैं वो। उनकी बातें सुनने में बहुत आनंद आता है कि भगवान को एक व्यक्ति समझकर उनके प्रत्यक्ष अंग की वो सेवा करते हैं और उन पर चर्चा भी करते रहते हैं। उनका मन जो है ना वहाँ पर अटका रहता है कि कानों में क्या लगाऊं, वो हमेशा चिंतन करते रहते हैं। कल मेरी सेवा है तो मन में उनका चिंतन दिन भर चलते रहता है, कल कौन से रंग का वस्त्र पहनाऊंगी और कौन से अलंकार पहनाऊंगे, कान में क्या लगाऊंगे, यहाँ कौन सा रंग का कौन सा झालर लगाऊंगे, ये सब पूरा चिंतन चलते रहता है। वो चिंतन से ही उनकी मति शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाता हृदय। अगर हम ब्राह्मण नहीं है, समझो ना दीक्षा भी हुआ है ना जन्म से भी नहीं, कोई बात नहीं, घर पे जो भगवान को विग्रह को स्थापन कर सकते हैं, प्रतिष्ठापना नहीं करेंगे लेकिन वेलकम करेंगे उनको, स्वागत विग्रह, वो भी अगर आप उनको प्रेम से सेवा करेंगे ना तो भी आपको प्रतिसाद देंगे वो। हमारे कितने ऐसे भक्त हैं जिनके घरों में जब रात को वो भगवान को सुलाने के समय पानी रखना भूल जाते हैं ना, तो सपने में आकर भगवान उनको बताते हैं, ए पानी नहीं दिया, उठो मेरे को प्यास लग रही है, और वो उठ के जैसे आते ना घंटी बाद देखते थे, अरे पानी नहीं रखा मंदिर को। ऐसे कितने लोगों का, एक एक भक्त का नहीं, और वो ऐसा भी नहीं कि वो बड़े भक्त थे बहुत और बड़े प्रसिद्ध थे और बड़े विद्वान थे, ऐसे भी नहीं, सिंपल लोग। भगवान को सिंपल लोग ही अच्छे लगते हैं, हमारे ऐसे बोगस लोग अच्छे लगते नहीं उनको, जो सादे हृदय के हैं ना, सिंपल हार्टेड, सरल हृदय, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए ब्रजवास में बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं आपको अभी मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ, हाँ, वो कहकर आज के कथा को यहाँ पर विश्राम दूंगा। मैं ऋषिकेश में था 1988 में, उधर अपने परिवार के साथ में फुल टाइम गंगा किनारे आश्रम में रहता था। तो उस समय सवेरे की भगवान की सेवा करने की मेरी सेवा थी, उसमें रोज 5:15 से लेकर 7 बजे तक भगवान को नहलाना, वस्त्र उतार के नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना और श्रृंगार आरती करना। तो मैंने बहुत महीने वो सेवा की, वो जमाना ऐसा था ना, उसमें कोई था ही नहीं कम्पीट करने के लिए, आप ही थे, जो भी सेवा है आपको ही करनी है। तो रोज वो सेवा करते थे हम लोग। तो मुझे ना बहुत दिन सेवा करने का मन में एक प्रश्न आया, अरे मैं रोज सेवा कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान उसको स्वीकार करते होंगे कि नहीं, मानूं कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्या है। तो मैंने एक दिन सेवा करते 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 भगवान से ऐसा बात किया मन में कि भगवान अगर आप मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हो, ऐसे मैं गौर निताय का श्रृंगार कर रहा हूँ, मन में बोल रहा हूँ कि आप, मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है कि नहीं है। आज अगर आप ये अगर सत्य है कि मेरी सेवा आप स्वीकार कर रहे हो, तो आज श्रृंगार के बाद में कोई भक्त प्रसाद खाते समय बोलना चाहिए कि भगवान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रृंगार पूरा हुआ और ब्रेकफास्ट सर्विस चालू हो गया, तो मैं बहुत उत्सुक था, कौन बोलेगा कौन बोलेगा, कौन है वो, कौन हो भाग्यवान जीव कि जो मुझे कहेगा कि आज भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन क्या कहें, किसी ने नहीं बताया, किसी ने बताया वड़ा बहुत अच्छा था, पोहा बहुत अच्छा था, चटनी अच्छी थी, सब कुछ बताया, लेकिन भगवान का श्रृंगार सुंदर हुआ किसी ने नहीं बताया। सबका परोस के हो गया, सब हाथ धो के चले भी गए, तो मैं बहुत दुखी हो गया। और इतना इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ, भगवान मतलब सेवा स्वीकार नहीं कर रहे मेरे। उसके बाद में वो स्वामी जी आए, थोड़ा देर से आए, बैठे, मैंने उनको ब्रेकफास्ट खिलाया, पहले दर्शन करके आए फिर ब्रेकफास्ट करने बैठे, और मैं परोस रहा था। वो कहते हैं विश्वरूप भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं आज, बड़ा शांति बचाओ हमारी भाषा में ऐसे बोलते हैं, बचाओ मतलब बच गया मैं। लेकिन मन कैसा होता ना अपना, भगवान तो हमें हर कदम पर रिस्पॉन्स देते रहते हैं, फिर भी हम लोग डाउट करते रहते हैं। संशयात्मा क्या कहते हैं ना, भगवदगीता में श्लोक है, भगवान कहते हैं कि अरे सबका उद्धार हो सकता है, लेकिन संशयात्मा जो है ना उसका उद्धार नहीं हो सकता है। जिसको संशय होता है मन में ना, वो बार बार आके पटकेगा अपना सर दुनिया में आके, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो सकता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है भगवदगीता में जो ये कहता है कि संशयात्मा जो है ना वो कभी भी उसका उद्धार नहीं होगा। तो वे सब कुछ आनंद का अनुभव किया, लेकिन बाद में फिर विचार मन में क्या आया, अरे ये बाय लक बाय चांस फ्लुक होगा, ये आज तो बाय चांस उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन अगर मैं कल दोबारा श्रृंगार करूंगा और दोबारा भगवान कहेंगे ना, तो फिर मैं विश्वास से कहूंगा कि हाँ मेरी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। तो वही शंका लेकर वापस अगले दिन वापस श्रृंगार कर रहा हूँ, हाँ, और कह रहा हूँ भगवान अगर आप सही में मेरी अगर सेवा स्वीकार करते हो तो आज ना प्रसाद के बाद कोई बोलना चाहिए कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप। और दूसरे दिन भी मैं बहुत प्रेम से सबको सेवा कर रहा हूँ, माता जी और बड़ा चाहिए ले लो, लेकिन माता जी कुछ बोल नहीं रही है दूसरे को दिया तीसरे को दिया सबको दिया लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, मैं प्रेम से दे रहा हूँ और लो ताकि बोलो कुछ बोलो लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। और बेचारे वो महाराज से कर लो लेट आए थे, वो महाराज भी खाकर चले गए मतलब हमारा एक एक लास्ट चांस था वो भी चले गए। फिर एक भक्त आया और वो बैठा दर्शन करके आया और मैं इसको परोस रहा हूँ प्रेम से, बोला आखिरी आखिरी चांस है मेरा, ये को बहुत सारा दिया पर मुझे और चाहिए तो ले लो मन में कह रहा हूँ बोलो बोलो मन में कह रहा हूँ लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहा, कुछ बोलो प्रभु जी बोलो कुछ, मैं उसको बोलो खा लो खा लो खा लो, मन में बोल रहा हूँ बोलो 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 बेचारे ने सब प्रसाद खाया और आखिर में कहा प्रभु जी आज श्रृंगार किसने किया है, मैंने कहा मैं ही नहीं किया है रोज करता हूँ, लगा बोलेगा कि आज अच्छा नहीं हुआ है शायद ये ठीक नहीं हुआ है, प्रभु जी बहुत सुंदर दर्शन था आज का बहुत सुंदर दर्शन था। मैंने कहा आज के बाद मैं कभी पूछूंगा नहीं भगवान का, कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि वो खुली खेल है, हाँ रोज वो रिस्पॉन्स देंगे, रोज मैं डाउट करूंगा, हाँ रोज प्रश्न पूछूंगा, वो क्या हमारे नौकर है क्या, वो हम रोज संशय करते रहेंगे रोज आपको जवाब देते रहेंगे, क्या जरूरत है उनको, करो संशय मरो यहीं, आते रहो बार बार आना जाना यहाँ निरंतर बोला था ना कल गाना याद है ना आपको, आना जाना यहाँ निरंतर कोई नहीं परमानेंट, कर लो राम भजन अर्जेंट तो तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल शास्त्र में भी नहीं, शास्त्र में ही नहीं लिखा है ये, तुम्हारे हमारे जीवन में भी होते रहता है हमेशा, केवल दिल में भाव होना चाहिए। यात्रा में क्यों आते हैं हम लोग, पिकनिक मनाने के लिए साइट सीइंग के लिए नहीं आते हैं, यात्रा में हम लोग वो भाव ग्रहण करने के लिए आते हैं, नहीं है हमारे पास वो, लेकिन वो यहाँ पर मांगने के लिए आते हैं। एक मैं एक स्ट्रांग वाक्य बोलना चाहता हूँ, हाँ आपको थोड़ा कष्ट होगा तो माफ करना, यात्रा में हम सब लोग भिखारी बनकर आना चाहिए। अरे कैसे हम भिखारी, हम तो बहुत बड़े गाड़ी है मुंबई में, डॉक्टर हैं, इतना बड़ा पेशा है, मैनेजर है हम, इतने बड़े हमारी संस्था में इतने मल्टीनेशनल में काम करता हूँ मैं कैसे भिखारी हो सकता हूँ, गले में सोने की चेन है मेरे वो सब कुछ है, मन से भिखारी बनो, क्योंकि मन के अंदर कहाँ पर अमीरी है, ऐश्वर्य मन में होना चाहिए ना, बाहर तो ऐश्वर्य होगा सब ऐश्वर्य, फिर बहू को बेटी को देके जाना पड़ेगा ना, मंगलसूत्र और वो चेन वेन सब तो बांट लेते बाद में कोई बचता नहीं है, जाने के पहले ही उसका विल होता है और ले लेते सब लोग। मम्मी अभी बहुत बुढ़ी है, उसके गले में एक सोने की चेन है, तो वो बेटी सोच रही कि ये ना ये मम्मी मुझे मेरा नाम पे लिखे रखिए, ये जब जाएगी तो ये मुझे मिलेगा। ऐसे भी मन में विचार चलता है कि अभी तो पम्मन पहन के रखी है लेकिन ये मेरे नाम पे है, जब जाएगी तो ये मेरे हाथ में आ जाएगा। कहाँ तुम्हारा है वो, कुछ दिन तुम्हारे शरीर पे है, जाने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। यहाँ पर जो भी आपने ग्रहण किया है ना, सब कुछ यहीं रख के जाना है आपको। चाहे अमेरिका में रह के आए हो, दुबई में रह के आए हो, इंग्लैंड में रह के आए हो, सब कुछ लेके आए हो, सब कुछ यहीं छोड़ना है। फिर सर लेके क्या जाना है, इधर में जो कमाया था ना वो इधर के साथ जाएगा, हृदय में जो कमाया है यहाँ का धन जो है वो हृदय के साथ आत्मा के साथ आगे जाएगा, बाकी सब सब कुछ छोड़ना है आपको। ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, आपको छोड़ना ही है, या तो दिल से छोड़ो या जबरदस्ती छुड़वाया जाएगा, उससे अच्छा दिल से छोड़ना अच्छा है। थैंक यू बोलकर, पहले से ही थैंक यू बोलना है, मन लगाना नहीं उसके अंदर। हाँ, तो ये है भगवान का वो भाव जो है ना, उसकी भिक्षा मांगने के लिए हम लोग यात्रा में आते हैं। इसलिए हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि यात्रा में आना है तो यात्रा का मूड बनाओ पहले, क्योंकि वो मूड बनेगा ना, वो एक पात्र की तरह होता है, मूड एक पात्र की तरह, और वो पात्र में आपको इकट्ठा करना है भिक्षा, सब भगवान की कृपा का भिक्षा, भगवान के भाव का भिक्षा। वो भाव हमको चाहिए जिससे भगवान हमारे बन जाए। लेट हिम बिकम आवर मैन, आवर फैमिली मेंबर, हमारे परिवार के सदस्य बन जाए, वो हमारे आत्मजन बन जाए। बाकी लोग तो आत्मजन हमारे हैं, बहुत सारे परिवार बड़ा बड़ा होता है, लेकिन मृत्यु के सामने कोई खड़ा रहता नहीं है। मृत्यु आती है तो सब लोग गायब हो जाते हैं, मतलब प्रेम तो करते हैं आपसे ही, लेकिन मृत्यु आपको जुदा कर देती है। कितना भी प्रेम होगा तो भी कोई बचता नहीं यहाँ पर, सब चले जाते हैं। जिस जिस का आप सहारा लेते हो ना, वो सब समय के भंवर में डूबते चले जाते हैं आपकी आंखों के सामने, पसंद हो या ना पसंद हो, सब लोग एक एक करके आपको छोड़ के चले जाते हैं। प्रेम करते हैं आपके ऊपर, लेकिन प्रेम यहाँ का निरंतर नहीं हो सकता है, उसको बीच में एक ब्रेक आता है जीवन समाप्ति का, और अगले जीवन में पूरा सेट बदले हो जाता है। आज कोई भाई बहन है, कल कुछ अलग हो जाएंगे, फिर कुत्ते के परिवार में जाएंगे, या बिल्ली के परिवार में जाएंगे, या कीटक के परिवार में जाएंगे, या देवताओं के लोक में जाएंगे, वहाँ पर भी टेम्पररी मामला है, वो भी सेट सब समय के बाद में बदले हो जाता है। देवता का लोक का भी वहाँ पर परमानेंट निवास नहीं है, क्षणे पुण्य मर्तलोके विशंति, यहाँ पुण्य जमा करके वहाँ जाएंगे, एंजॉय करेंगे अप्सराओं के साथ, नंदन वन, अप्सरा, सौंदर्य सुगंध का अनुभव करेंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर आके, फिर नया सेट चालू हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर नया सेट, फिर नया सेट, फिर नया सेट। टेम्पररी सब कुछ, अशाश्वतम, कुछ फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पर आओ और भगवान से टाका लगाओ अपना, एक बार टाका जोड़ दो भगवान का, ताकि ना हमको वो स्वर्ग का जीवन चाहिए, ना पृथ्वी का जीवन चाहिए, ना नरक का जीवन भोगने के लिए चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल आप चाहिए भगवान। और जब वो आप चाहिए, ये इच्छा इतनी तीव्र होगी कि बाकी सारी इच्छाएं क्षीण हो जाएंगी, सब इच्छा नष्ट हो जाएंगी उस इच्छा के सामने, और वो इच्छा प्रधान हो जाएगी, तो भगवान कहेंगे अब तुम योग्य हो गए हो, अब तुम्हें मैं मेरे पास ले जाऊंगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, तब मैं आपको मेरे धाम में ले जाऊंगा। फिर वहां पर ना कोई अशाश्वती होगी, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई दर्द होगा, ना कोई दुख होगा, वहाँ सब कुछ आपके होंगे, और जो भी होगा वो परमानेंट होगा, कुछ भी चीज़ समाप्त नहीं होगी। आप बुढ़े भी नहीं होंगे, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, आप ना मरेंगे ना जन्म लेंगे, परमानेंटली वहाँ रहेंगे। लोग पूछते हैं फिर भगवान वहाँ करना क्या है, वहाँ पर करना क्या है, होता क्या है उधर? वहाँ पर निरंतर प्रेम पूर्ण आदान प्रदान और सेवा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। भगवान भी उसका शो पृथ्वी पर दिखाते हैं आकर, वहाँ पर क्या चलता है। वृंदावन में आकर उन्होंने एक 12 साल तक दिखाया कि वहाँ पर क्या होता है, उसकी झलक यहाँ पर दिखाई 12 साल तक। लोग क्या करते हैं, कैसे हर क्षण में मग्न रहते हैं भगवान को रिझाने के लिए, और इतनी वैरायटी पूर्ण एक्टिविटी होती है वहाँ पर। ऐसा नहीं क्या है ये रोज का वही काम बोरिंग, ऐसा नहीं होता है, उसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि जीव जो है ना वो परम 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 संतुष्ट हो जाता है, और उसको कोई किसी की इच्छा ही नहीं होती है, और निरंतर भगवान की सेवा में वहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर लोग रहते हैं वहाँ पर, इतने सौंदर्यपूर्ण लोग रहते हैं, इतने प्रेमी रहते हैं, किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, लोभ नहीं होता, हर व्यक्ति जो है वो संत होता है वहाँ पर। लेकिन है सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष, लेकिन संत स्वरूप होते हैं। सब कुछ भगवान पर निछावर करके जीते हैं, ऐसा भगवान के धाम का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। और उसका एक मार्ग है वहां पहुंचने का, भगवान के विग्रहों की सेवा। इसलिए आपके घर में जरूर आप कम से कम चित्रपट रखिए, उनको फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, उनकी आरती पूजा कीजिए, भोग लगाइए, घंटी बजाइए और उनसे संबंध प्रस्थापित कीजिए। वो फोटो भी आपसे बोलेगा, क्योंकि भगवान है ना, वो सीमित नहीं है कि अरे हाँ भाई मैं पत्थर की मूर्ति से बोलूंगा लेकिन फोटो से नहीं बोलूंगा, लकड़ी की मूर्ति से बोलूंगा लेकिन पेंटिंग से नहीं बोलूंगा। नहीं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आपका भाव चाहिए उनको खाली, बस प्रेम के भूखे हैं। एनीवे, सो वंडारू विष्णु मंदिर जो है वो ये भाव का एक प्रतीक है, भाव से कैसे भगवान रिझते हैं और कैसे अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। अरे वो आम जो रखा था ना नमक के पानी के अंदर, उसके भगवान भूखे नहीं है, क्या चाहिए उनको आम, सारे आम उनके ही है दुनिया में, क्या चाहिए। राधा रानी उनको इतना अच्छा, रुक्मिणी देवी राधा रानी इतना अच्छा भोजन खिलाती है, ये दुनिया के आम में क्या रखा है। नहीं, वो दुनिया के आम के माध्यम से वो भक्त का जो निर्भेड़ निरपेक्ष निस्वार्थ प्रेम जो है ना, उसका आस्वादन कर रहे हो। तो ये हो गया विषय हमारा, अर्च विग्रह पूजा, भगवान के विग्रह की पूजा। दूसरा, यहां पर मैं गया था ना देखने के लिए, आप लोग सोचते होंगे कहाँ गए प्रभु जी, क्या कर रहे हैं, तो मुझे बता रहे थे कि ये भी एक विशेष जगह है, कुछ है नहीं वहां पर लेकिन है भी सब भगवान के भक्ति के विषय में रहस्यमय बातें होती कुछ कुछ। तो वो कहते थे कि वादिराज स्वामी जो है ना वो यहां पर थे और उन्होंने इतना तप किया है कि वो कभी जल के नीचे जाकर समाधि लगाकर जप करते थे, कभी मतलब बहुत तपस्या किया उन्होंने, बहुत श्रेष्ठ भक्त थे वो भगवान के। वाणीराज स्वामी की कथा जो है ना वो मध्वाचार्य के बाद में, प्रति मध्वाचार्य थे उनके बाद में आने वाले उनके संप्रदाय में, तो उनका एक शिष्य था नारायण नाम का, वो भी बड़ा संत अच्छा भक्त था। एक दिन क्या देखता है वो, देखो कैसा होता है ना, गुरु पर भी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी, लेकिन क्या होता है ना, हम गुरु के बहुत पास में आ गए ना तो गुरु में भी दोष ढूंढने लगते हैं हम लोग। जब तक गुरु दूर है, नहीं मिलते रहते तो बड़ा दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन अगर गुरु बहुत निकट आ गए हमारे और हम उनको देख रहे हैं, उठते बैठते खाते पीते स्नान करते सब कुछ उनका रोज नित्य क्रम देखते हैं, तो फिर धीरे धीरे, हाँ क्या कहते हैं उसको, अति परिचयात अवज्ञा, अवज्ञा यानी कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, उनमें भी दोष देखने लगते हैं। तो ऐसे एक दिन वादिराज स्वामी सब लोग मिलकर एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो पारण करने के समय के पहले गलती से वाणीराज महाराज ने वो अन्न प्रसाद खा लिया, मतलब पारण कर दिया, एकादशी उपवास छोड़ के अन्न खा लिया। तो ये नारायण तुरंत बोला, अरे देखो वाणीराज महाराज कितने ढोंगी है, दुनिया के सामने बड़े संत बन के घूमते हैं लेकिन छुप छुप के एकादशी के दिन भी प्रसाद खाते हैं, ऐसा उसके मन में चल रहा है सब कुछ ये। और वाणीराज बड़े बड़े संत थे वो, उनको सब अनुभूति होती है कि शिष्य के मन में क्या चल रहा है। तो वो पूरे गांव में निंदा करना शुरू किया, अरे वाणीराज जी हमारे इतने संत थे, हम लोग इतना श्रद्धा रखते थे और दुनिया को एकादशी के उपवास के बारे में सिखाते हैं और खुद एकादशी के दिन में हमने खाते हैं, हमसे उपवास करवाते हैं, ऐसा क्या क्या बोलने लगा वो, बहुत उसने निंदा किया। तो गुरु जी के पीछे पीछे चला गया, गुरु जी नदी के अंदर चले गए और नदी के अंदर जाकर उन्होंने तपस्या किया, भजन किया, नदी के बाहर आ गए, एक थाली लगाया और क्या कहें आपको, जो भी खाया था ना वो सारा वैसे के वैसे प्रकट किया उन्होंने उसमें। और वो देख रहा है नारायण कि जो मैंने देखा ये खा रहे थे वो उन्होंने प्रकट करके छोड़ दिया उधर, तो जाके वो चरणों में गिर गया और उसने अपने गुरु को अपराध किया, इसलिए गुरु का शाप लग गया उसको। कभी भी याद रखना, दुनिया में ना कुछ भी करना, वैष्णवों का अपराध नहीं करना कभी भी, और वैष्णवों के अपराध के ऊपर कभी गुरु अपराध मत करना। गुरु अपराध मतलब आध्यात्मिक जीवन का सर्वनाश। जो भी आपने मेहनत किया ना भगवान की भक्ति में, तपस्या किया है, नियम पालन किया है, एक ही क्षण में उसमें सारा पानी फेर सकते हैं आप गुरु अपराध करके। उसको अच्छी तरह कहे तो कभी भी गुरु अपराध नहीं करना चाहिए, विचार में भी नहीं करना चाहिए, मन में भी नहीं करना चाहिए। तो ना वो व्यक्ति मर गया और मरकर वो भूत बन गया, तो भूत बनने के बाद बहुत पश्चाताप किया उसने, अरे मैंने गुरु का अपराध किया, मैंने संत का अपराध किया, मुझे बचाओ करके उनकी आराधना किया। तो वो भी उनको समझ में आ रहा था कि भूत के योनि में ये मुझे पुकार रहा है, तो उन्होंने उनको वरदान दिया उसमें भी। और ये वरदान दिया कि अभी तुमको तुम्हारे कर्म के वजह से ये भूत का शरीर मिला है, लेकिन उसमें भी मैं तुम्हें सेवा में लगाऊंगा, ताकि वो सेवा से भी तुम भगवान की ओर आगे प्रगति कर सकते हो। ऐसा वरदान दिया कि इस गांव में, इस क्षेत्र में किसी को भूत बाधा हो गई होगी, या किसी के ऊपर कोई करणी कर दिया होगा, कोई वशीकरण किया होगा, कोई और क्रिया मुद्रा कुछ किया होगा, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, आपको नारियल चढ़ाएंगे तो उस प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। तो वहां पर जो पलना है ना, वो उनका प्रतीक है, पलने में कोई नहीं है लेकिन वो उनका स्थान है, और लोग उनको नारियल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो बाधा हो उससे आप हमको मुक्त करो। तो वो जो पुजारी जी मुझे बता रहे थे, प्रभु जी आप भी उनको नारियल अर्पण करना, इसलिए नारियल यहाँ पर आ गए हैं। आपने सोचा होगा कि नारियल कैसे आ गए, क्या करेंगे प्रभु जी नारियल का अभी किसके घर पे पड़ेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है, आगे मत जाना सीढ़ी चढ़ के, सीढ़ी पे ही रोट रखना और प्रार्थना करना। वो भी बड़े संत थे, ऐसे नहीं कि वो कोई खराब व्यक्ति थे, वो भी भजन करने वाले भक्त थे, लेकिन भजन करने के बाद भी हमारे हाथ से अपराध हो सकता है, इसलिए किसी पर भी टीका करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना। आपको बुरा भी दिखेगा ना, दुर्लक्ष कर देना, अच्छा दिखेगा तो उसके बारे में बोलना। देखिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, कितना भी अच्छा कोई करेगा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो 50 अच्छा करेगा, एक चीज बुरा करेगा उस पर बार 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 बोलते रहेंगे हम लोग, तुमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। ये प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। तो ये जो भूतनाथ की कहानी है, इस पर हम देख सकते हैं कि छोटा सी गलती से देखो कितना बड़ा परिणाम हो जाता है। इससे अच्छा किसी का बुरा करने की जरूरत ही क्या है, लाभ क्या है उससे। कहते हैं सबसे बड़ा घाटे का सौदा है किसी की निंदा करना, उससे कभी भी ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को लाभ होता है उसका, सत्य होने पर भी, सत्य है वो चीज़, लेकिन वो बार बार कहने से सुनने वाले का नुकसान होता है और बोलने वाले का भी भयंकर नुकसान होता है। इसके वजह से वो अभी भी वहाँ पर उसी अवस्था में है, और अभी वो वादिराज की कृपा से उस अवस्था में भी वो सेवा कर रहे हैं, भक्तों के दुखों का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो शक्ति उनको वाडीराज ने दिया था। देखो जिसका अपराध किया वही वरदान दे रहे हैं उनको। देखो आप कैसे संत होते हैं, संत लोगों का स्वभाव ये होता है, आप अपराध करो वो आपको वरदान देंगे, है ना। वो कुबेर के पुत्र थे ना, वो दोनों नंगा नाच कर रहे थे ना, वो नदी में शराब पीकर, संत का अपराध किया उन्होंने, लेकिन नारद मुनि ने क्या किया, आपको लगेगा कि शाप दिया, सबको लगता है शाप दिया उनको, नल कुबेर मणिग्रीव को शाप देकर पेड़ बना दिया। अरे कितना बड़ा शाप दिया, इतने सुंदर व्यक्ति को पेड़ बना दिया, लेकिन कहाँ बना दिया पेड़, कृष्ण भगवान के आंगन में बना दिया। बहुत हजारों साल तक कई युगों तक पड़े रहे वो, लेकिन वहीं पर थे जहाँ पर आगे जाकर कृष्ण भगवान ने जन्म लेकर वहाँ पर लीला किया, उस आंगन में वहाँ पर ये दो पेड़ खड़े थे, और किसी को भी भाग्य नहीं था, उतना भाग्य उन पेड़ों को प्राप्त हुआ, सारी भगवान की बाल लीलाएं उन दो पेड़ों ने देखी, और केवल ये लीला देखकर ही वो उनका पवित्र हृदय हो गया, पूरे शुद्ध भक्त बन गए वो, और भगवान ने उस पेड़ को उखाड़ा और उनको मुक्त कर दिया। ऐसे हर एक राक्षस की कथा जो वृंदावन में है वो ऐसी ही कथा है, आके संत का अपराध किया, जैसे वो उत्कल राक्षस था, उसका एक बेटा था, वो आके बैठ गया उधर जाजली मुनि के आश्रम में, ऐसे कुंड में बैठकर अपने एक पाइप छोड़ रहा है, और पाइप का जो मछली आ रही है उसको खा रहा है मुंह में। तो मुनि आगे बोले, हमारे आश्रम में ऐसा नहीं होता है, कोई जीव किसी की हत्या नहीं करता है। दुर्लक्ष किया, बहुत शक्ति थी उसके अंदर, बहुत बल था, देवताओं के राज्यों पर आक्रमण करके विजयी होकर आया था वो, बड़ा मत था उसको, बहुत सुंदर भी था, शक्तिशाली था, पावरफुल था। संत बोल रहे मत कर ऐसा, फिर वापस पाइप डालता है, मछली आती है संत के सामने से खाता है। अच्छा बहुत ज़्यादा मछली खाने का शौक है तुमको, जाओ बगुला बन जाओ। तो इतना सुंदर शरीर था, इतना आकर्षक था, देवता का शरीर था, था राक्षस लेकिन शरीर तो बहुत सुंदर था, अचानक बगुला बन गया वो, तो सारा घमंड उतर गया, अरे बाप रे, इन्होंने बोला और घमंड तुरंत चेंज हो गया तो चरणों में गिर गए। तो वो बाद में फिर बहुत गिड़गिड़ाए, अभी देखो संत का अभी अपराध किया था ना उसने, दो मिनट में गिड़गिड़ाया, कोई बात नहीं, अभी ये तो शाप तो पीछे नहीं आएगा, लेकिन आपको मैं ऐसा वरदान दूंगा ना कि शाप भी एकदम तुच्छ बन जाएगा, भगवान आएंगे द्वापर में तो वो आपके शरीर में घुसेंगे और वो आपका वध करेंगे और आपको पूरा गोलोक धाम भेज देंगे। बोला वो बकासुर बन गया, बकासुर का भगवान ने वध कर दिया। उसके शरीर में भगवान थे कुछ समय के लिए, निकल गया था भगवान को, भगवान जिसके शरीर के अंदर प्रवेश किए तो वो पवित्र हो गया पूरा। फिर बाहर आए और भगवान ने चोंच फाड़ कर उसको मार दिया, लेकिन आपको लगा कि राक्षस को मार दिया, लेकिन भगवान ने तो उसका उद्धार किया। और जादूली मुनि ने क्या किया, शाप दे के उद्धार वरदान दिया। अरे हर एक राक्षस को संतों ने वरदान ही दिया हुआ है। और एक आया और अष्टावक्र मुनि को बोला, क्या आठ जगह पर आपको बैंड है शरीर में, ऐसे आप ऑक्टोपस की तरह चलते हो। और जोर जोर से हंसने लगा उसको। उसने कहा हंसते हो, जाओ अजगर बन जाओ। तो वो क्या बना, अघासुर। और अघासुर को भगवान ने वध करके पूरा धाम में भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, संत लोग है ना वो कृपा ही करते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, अभी समाप्त करता हूँ, हमारा पुराण खत्म ही नहीं होता, क्या करें। तो वो दो दो ऋषि थे। देखो संत का हृदय कैसे होता है वो समझने के लिए बता रहा हूँ। दो ऋषि थे, वो नदी में स्नान कर रहे थे। तो एक ऋषि क्या देखता है स्नान करते समय, कि एक बिच्छू जो है ना वो नदी के पानी में डूब रहा है। तो वो तुरंत जाके उस बिच्छू को ऐसे हाथ में लेता है बचाने के लिए। तो हाथ में लेते ही वो बिच्छू उसको काट देता है, दंश करता है उसको, डंक लगाता है। तो वो दर्द से उसको पूरा झटक के वापस पानी में फेंकता है। अभी आपको अगर बिच्छू का डंक किसी को लगा कि आज तक कभी किसने एक्सपीरियंस किया है, बहुत जोरदार होता है वो। उसको बचाने के लिए गए लेकिन उसने डंक किया उसको, तो इतना दर्द हुआ कि वो झटका से वापस पानी में गिर गया, वापस डूबने लगा। वापस संत गए और उसको बचाने के लिए हाथ में लिया और ऐसे सोचा कि अभी लूंगा तुरंत फेंक दूंगा बाहर, लेकिन उसके पहले उसने डंक मार दिया। ऐसे एक बार नहीं, दसों बार हो गया, दसों बार हुआ ऐसे। हर बार वो डूब रहा है, हर बार ये उसको उठा रहे हैं और हर बार उसको डंक मार रहा है वो। तो बाजू का ऋषि बोल रहा है, महाराज जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं आप, इतना बार आपको काट चुका है वो, फिर भी आप उसको बचाना छोड़ दो, मरने दो उसको, क्योंकि और जितना बार उसको बचाओगे उतना बार काटेगा आपको वो। तो संत ने क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, ध्यान ध्यान से सुनो आप। वो कहते हैं कि वो बिच्छू का स्वभाव है काटना, वो जहां पर भी कुछ भी हो जाए वो काटते रहता है, उसका स्वभाव है काटना। और देखो कितना अपने स्वभाव पर टिका हुआ है वो, मैंने 50 बार उसको बचाया फिर भी 50 बार अपना स्वभाव नहीं छोड़ा उसने, काटता ही रह गया। और संत का स्वभाव होता है दयालु होना, तो अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ू। वाई शुड आई गिव अप माई कंपैशनेट नेचर। इसलिए वो आखिर में यशस्वी हो गए उसको बचाने के लिए, लेकिन उसके बीच में जितनी बार काटना था वो सहन करके आखिर में उसने उसको बचा ही लिया। तो संत क्या कहते हैं, वो आपकी बुराई को देखकर अपनी अच्छाई को छोड़ने देते हैं, वो अपनी अच्छाई बनाए रखते हैं। क्या देख रहे हैं कि बुरे व्यक्ति को बुराई दिखाने की जितनी आदत है, जितना स्वभाव है, उससे अधिक मेरा अच्छा का स्वभाव होना चाहिए। अगर वो इतना तुला हुआ है तो मैं भी कंपटीशन में तुला होना चाहिए मेरे स्वभाव के ऊपर। तो संत लोग ऐसे होते हैं, कितना भी अपराध करो उनकी करुणा मिटती नहीं है, उनका करुणा का सागर होता है और वो सागर के सामने कोई अपराध टिकता ही नहीं है। जैसे अग्नि में आप डालोगे, गीला डालो सूखा डालो, सब जल के भस्मसात हो जाता है। और ऐसे संत हमें इस दुनिया में मिलते हैं, उनको ढूंढना चाहिए, उनका चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान बिना संत की सेवा किए संतुष्ट नहीं होते हैं। आप चाहे उनकी सेवा जितनी चाहे कर सकते हैं और वो संतुष्ट भी हो सकते हैं, लेकिन उससे अनंत गुना अनंत मात्रा में वो उनके भक्त की सेवा करने से संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संत जो है वो उनको बहुत प्रिय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।